नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन में संघर्ष को तत्काल समाप्त करने के प्रयासों सहित फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति तथा स्थिरता की तत्काल बहाली के लिए भारत के सतत समर्थन को दोहराया। टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया और उनकी समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। श्री मोदी ने अगले वर्ष फरवरी में होने वाले भारत में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों का धन्यवाद दिया और भारत में उनका स्वागत करने की उत्सुकता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला डेर लेन के साथ हाल ही में बातचीत की थी। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तत्काल संपन्न कराने और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के कार्यान्वयन के प्रति साझा वचनबद्धता दोहराई थी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ शशांक कुमार।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वह नागरिकों तक जीएसटी के लाभों के हस्तांतरण पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखेंगी। एक मीडिया चैनल को दिए साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर के लोगों ने जीएसटी सुधारों को एक स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है तो वे इसकी सूचना दें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज शाम अचानक हुई मूसलाधार बारिश के कारण नौगांव नाला उफान पर आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और हर संभव सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो गई हैं। इस बीच पंजाब में पिछले दो दिनों में बाढ़ से कोई और नुकसान नहीं हुआ है। हालात धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भारी मानसूनी बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर रेलवे सोमवार से 5 दिनों के लिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन और संगलदान स्टेशन के बीच दो लोकल पैसेंजर ट्रेनें चलाएगा। इससे रियासी और रामबन में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण फंसे यात्रियों को मदद मिलेगी। ये सेवा महत्वपूर्ण संपर्क बहाल करने में मदद करेगी और सड़क संपर्क बहाल होने तक जीवन रेखा का काम करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई दिल्ली में आज कैंपस टैंक का उद्घाटन किया। ये प्रमुख लाल पैच स्टार्टअप देश की अगली पीढ़ी के उद्यमियों को खुद का स्टार्टअप शुरू करने का पेशेवर अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि 6 मिलियन डॉलर की कोष पूल से संचालित ये अखिल भारतीय पहल युवा नवोन्मेषकों को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।
Is the first of its kind. They have launched a campus tank dedicated to the startups, creating a structure where there could be an easy facilitation of public-private linkage with a university, an academic institution acting as a catalyst. This trend would pick up across the country. We have reached number 3 in the startup sector. The startup movement to sustain should have a very strong industry linkage, rather early industry linkage.
गाजा में आज तड़के हुए इजरायली हमलों में 41 से अधिक फलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार हमले में मरने वालों में गाजा शहर के 25 लोग और 6 सहायता के इच्छुक व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा खान यूनिस के अल मवासी क्षेत्र के शिविर पर हुई बमबारी में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप में भारत ने अंतिम सुपर 4 मैच में चीन पर 7-0 से शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के लिए मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकरा और विवेक सागर प्रसाद ने गोल किए। आज खेले गए अन्य मुकाबले में कोरिया ने मलेशिया को 4-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।